समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। एक नए दिन की नई सुबह में आकाशवाणी गोल्ड पर हम आपके साथ जुड़ चुके हैं न्यूज मैगजीन आज सवेरे लेकर, जिसमें तमाम खबरें और साथ ही साथ और भी बहुत कुछ होता है जिसके बारे में डिटेल में बता रही हैं सुभद्रा। और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी, मेरे साथ हैं सुभद्रा। नमस्कार सुभद्रा।
हेलो देवेंद्र, गुड मॉर्निंग टू यू एंड ऑल आवर लिसनर्स ट्यून इन टू अस दिस फ्राइडे मॉर्निंग। वी आर रेडी विद अनदर इंटरेस्टिंग एडिशन ऑफ आज सवेरे, सो बी विद अस एंड एंजॉय। फर्स्ट स्टार्टर्स देवेंद्र, लेट्स गेट सम न्यूज।
जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 दिन के ओडिशा दौरे पर रहेंगे। वे राजधानी भुवनेश्वर में पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन में भाग लेंगे। ओडिशा पहली बार इस सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। सम्मेलन में सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अनुसंधान और विश्लेषण स्कंध रॉ, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, सतर्कता ब्यूरो और विशेष सुरक्षा समूह के प्रमुख भाग लेंगे। गृहमंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन में आंतरिक सुरक्षा, साइबर अपराध, माओवादी खतरे, यांत्रिक बुद्धिमत्ता की चुनौतियों, ड्रोन से उत्पन्न खतरों और आतंकवाद से निपटने पर चर्चा होगी।
प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज सेड दैट द आर्म फोर्सेज नॉट ओनली नीड टू सिक्योर इंडियाज नेशनल इंटरेस्ट बट ऑल्सो प्रिपेयर फॉर न्यू सिक्योरिटी चैलेंजेस लाइक साइबर वॉरफेयर एंड टेररिज्म। एड्रेसिंग स्टूडेंट ऑफिसर्स एंड फैकल्टी ऑफ द डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन तमिलनाडु, शी सेड इन द फास्ट चेंजिंग जियो पोलिटिकल एनवायरमेंट वी नीड टू बी वेल प्रिपेयर टू टैकल एनी सिचुएशन। President is on a 4-day visit to Tamil Nadu from Wednesday. Today, President Draupadi Murmu will interact with the members of tribal women self-help groups and the prominent members of the tribal community Nilgiri district at Rajbhavan with the Kamandalam. The Lok Sabha has passed a resolution extending the tenure of the Joint Parliamentary Committee JPC on the Waqf Amendment Bill 2024 until the last day of the budget session in 2025. JPC Chairman and BJP MP Jagdambika Pal moved the motion in the House, which was approved by a voice vote yesterday. The JPC comprises 21 members from the Lok Sabha and 10 from the Rajya Sabha, including 13 opposition members. The Waqf Amendment Bill 2024 aims to bring significant reforms including digitization of records, stricter audits, increased transparency and legal mechanisms to reclaim illegally occupied waqf properties. The bill is aimed at reforming the management and regulation of waqf properties across the country. The JPC is holding a series of meetings to gather input from government officials, legal experts, waqf board members and community representatives from different states and union territories, aiming for the most comprehensive reform possible.
महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख अजीत पवार ने कल गृहमंत्री अमित शाह से नई दिल्ली में मुलाकात कर राज्य में सरकार गठन पर चर्चा की। इस अवसर पर भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भी मौजूद थे। श्री एकनाथ शिंदे पहले ही कह चुके हैं कि वे राज्य में सरकार गठन में बाधा नहीं बनेंगे और राज्य के मुख्यमंत्री पद के संबंध में भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के फैसले को स्वीकार करेंगे। महाराष्ट्र में हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति ने भारी जीत दर्ज की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने संभल में हुई हिंसक घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। इस घटना में 4 लोगों की मौत हो गई थी। उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश देवेंद्र कुमार अरोड़ा की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति मामले की जांच करेगी। समिति में भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी अमित मोहन प्रसाद और भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी अरविंद कुमार जैन भी शामिल हैं। समिति 2 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। समिति ये जांच करेगी कि जामा मस्जिद बनाम हरिहर मंदिर विवाद में न्यायालय द्वारा आदेशित सर्वेक्षण के दौरान 24 नवंबर को ही हिंसा पूर्व नियोजित साजिश थी या ये कोई सामान्य आपराधिक घटना थी। इस बीच सर्वोच्च न्यायालय सर्वेक्षण के संबंध में जिला न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुनवाई करेगा।
Union Mines Minister G. Kishan Reddy has launched the first tranche of offshore mineral blocks auction in New Delhi. This first tranche of auction includes 13 mineral blocks spanning across the Arabian Sea and Andaman Sea, featuring a mix of minerals such as construction sand, lime mud and polymetallic nodules and crusts. These minerals are critical for infrastructure development, high-tech manufacturing and green energy transition. Speaking on the occasion, the minister said very few countries in the world opt for offshore mining and India has joined the league. Mr. Reddy added that the demand for critical minerals like cobalt, nickel, copper and manganese is increasing rapidly and in the future it will increase further in India. He further added that very soon India will launch its critical minerals mission, which will ensure the country's global presence and strengthen the domestic supply chain.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि पिछले 10 वर्षों में आतंकवाद, वामपंथी उग्रवाद और मादक पदार्थ के मामले में बड़ी कामयाबी मिली है। कल मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी के समापन समारोह में उन्होंने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की सख्त नीतियों के परिणाम अनुकूल रहे हैं। श्री शाह ने कहा कि मार्च 2026 तक वामपंथी उग्रवाद को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। श्री शाह ने कहा कि देश के समक्ष चार बड़ी चुनौतियां हैं, इनमें जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, वामपंथी उग्रवाद, पूर्वोत्तर में उग्रवाद और मादक पदार्थ शामिल हैं। श्री शाह ने कहा कि 150 वर्ष पुराने ब्रिटिशकालीन कानूनों की जगह 3 नए फौजदारी कानूनों के लागू होने से सजा की दर 90% तक बढ़ने की संभावना है।
India has bolstered its partnership with Zambia by supplying medical equipment to support the nation's healthcare system. The consignment of medical supplies departed from Mumbai yesterday. Minister of External Affairs MEAPO spokesperson Randeep Jaiswal has said that the consignment consisting of hospital beds, operation theatre tables, infant incubators and resuscitators, anesthesia machines and other products departed Nav Sheva Port, Mumbai. It will contribute to strengthening the healthcare system of Zambia. Going to some sports news now. In a nail-biting encounter, defending champions India triumphed over Japan in the Men's Junior Asia Cup 2024 hockey tournament in Muscat, Oman yesterday. This victory marks India's second consecutive win in Pool A, following their dominant 11-0 opening against Thailand. India's goals came from a penalty corner, rebound by Thok Chom Kingson Singh, and subsequent strike by Rohit and Arijit Singh Hundal. Japan's Neo Sato responded with two goals on penalty corners. Tomorrow, India will take on Chinese Taipei in the next match, and in the final group stage encounter, the team will take on Korea on Sunday.
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर कल एक वर्चुअल बैठक करने वाली है, जिसमें यह साफ हो जाएगा कि टूर्नामेंट पाकिस्तान में होगा या नहीं। टूर्नामेंट 19 फरवरी से मार्च के बीच होने वाला है, लेकिन आईसीसी ने अभी तक आधिकारिक कार्यक्रम जारी नहीं किया है। बैठक में इस बात पर चर्चा होगी कि क्या टूर्नामेंट पूरी तरह से पाकिस्तान में आयोजित किया जाएगा या हाइब्रिड मॉडल के तहत, जिसमें पाकिस्तान दूसरे देश के साथ मेजबानी की जिम्मेदारियां साझा करेगा, जिसे अभी तय नहीं किया गया है। यह बैठक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी की ओर से लिखे उस पत्र के बाद बुलाई गई है, जिसमें कहा गया है कि भारत 2025 की शुरुआत में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान खेलने नहीं आएगा। तो ये थी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, कुछ खेल खबरें भी आपने सुनी, और अब समय है महानगरों से जुड़ी खबरों का। तो आइए जानते हैं चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु से क्या खबरें हैं। सुभद्रा, आपके पास?
Yes, Devendra, we start with news from Chennai. CMRL has awarded 3,657 crore rupees contract to BEML Limited for procurement of 70 driverless three-car train sets. The letter of acceptance was awarded on Thursday. These trains will serve corridors 3 and 5 of Phase 2 of Metro Rail expansion in the city. Funded by the Japan International Cooperation Agency, this contract encompasses design, manufacture, supply, testing, commissioning and comprehensive maintenance of trains for 15 years. The scope includes depot machinery and plant for standard gauge metro rolling stock. The first train is expected to arrive at the Madhavaram depot by late 2026. After 14 months of rigorous testing, it will be integrated in the regular services. Madras High Court has made it clear that the Enforcement Directorate is empowered to issue repeated summons to a person accused of money laundering, even after filing a complaint before a judicial court. A division bench of Justice S.M. Subramanian and Justice M. Jyoti Raman made the observation while dismissing pleas issued in connection with the granite quarry scam in 2020. Moving to Bengaluru now, the inter-college athletic meet organized by Bengaluru City University concluded with St. Francis College men's team and Mount Carmel College women's teams emerging overall champions. In the individual events, N. Arya of St. Joseph Commerce College was adjudged the best athlete among men. Priya K. of Mount Carmel College emerged as the best athlete in the women's category. The Vice-Chancellor of Bengaluru City University, Professor Lingaraja Gandhi, presented the championship awards to the teams and individual athletes. There were 1,200 students of different colleges competing in the sports meet organized by the City University. Speaking on the occasion, the Vice-Chancellor, Professor Lingaraja, gave a call to take active participation in sports along with their studies. He informed that the City University has modernized sporting infrastructure in the university for the benefit of the sportspersons. He added that victorious teams will take part in the inter-university national games to be held in Bhubaneswar in December end. Hyderabad news now. In Telangana, many places in several districts of the state recorded minimum temperatures below 10 degrees Celsius this morning. Nyalkal in Sangareddy district recorded the lowest minimum temperature of 7.9 degrees Celsius during the past 24 hours. IMD Hyderabad has issued a yellow alert for several districts and for Hyderabad city as winter sets in. The Met officials also predict that Hyderabad will experience temperatures ranging between 11 and 15 degrees Celsius over the next few days. And Devendra, what about other news, other metro news?
जी, सर्वोच्च न्यायालय ने कल आदेश दिया कि दिल्ली में खराब वायु गुणवत्ता से निपटने के लिए वर्तमान में लागू ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप का चौथा चरण 2 दिसंबर तक जारी रहेगा। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ये उपाय स्कूलों पर लागू नहीं होंगे। इस बीच वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग प्रतिबंधों को कम करने के संबंध में एक बैठक करेगा। न्यायालय ने कहा कि कोर्ट कमिश्नरों द्वारा प्रस्तुत दूसरी रिपोर्ट में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान से संबंधित प्रतिबंधों को लागू करने में प्रशासन की घोर विफलता दिखती है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि वो इस समस्या का स्थायी समाधान खोजने के लिए वायु प्रदूषण से संबंधित मामले की विस्तृत सुनवाई जारी रखेगा। दिल्ली विधानसभा का सत्र आज से शुरू हो रहा है। सुश्री आतिशी के मुख्यमंत्री बनने के बाद विधानसभा का ये पहला सत्र होगा। सत्र 3 दिसंबर तक चलेगा। इसमें सदन की कुल 3 बैठकें होंगी। सचिवालय के अनुसार कार्य की आवश्यकता होने पर सदन की बैठक बढ़ाई जा सकती है। दिल्ली सरकार ने गुरू नानक आई सेंटर में ऑप्टोमेट्री प्रशिक्षण विंग की शुरुआत करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री आतिशी ने इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि इस प्रशिक्षण विंग के माध्यम से छात्रों को 4 साल का बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री कोर्स उपलब्ध कराया जाएगा। दिल्ली सरकार ने दिल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को फिर से लागू करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री आतिशी ने इस फैसले को लेकर जनता को बधाई देते हुए कहा कि 1 जनवरी 2024 के बाद खरीदे गए इलेक्ट्रिक वाहनों की सब्सिडी अब सीधे खरीदारों के खातों में भेजी जाएगी। केंद्र सरकार ने नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत यमुना नदी को पुनर्जीवित करने के लिए दिल्ली में 1951 करोड़ रुपए की लागत वाली 9 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में जलशक्ति राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी ने बताया कि दिल्ली में प्रतिदिन 1268 मेगालीटर सीवेज उपचार क्षमता निर्माण के लिए 9 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। और रुख करें मुंबई का, तो मुंबई में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए की विशेष अदालत ने पुणे में बांग्लादेश के अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के आतंकवादियों को शरण देने के आरोप में 3 बांग्लादेशियों को 5 साल की कैद की सजा सुनाई है। एनआईए की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार इन लोगों को आईपीसी और विदेशी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया और 5 साल की जेल तथा 2000 रूपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। 61वें महाराष्ट्र राज्य मराठी फिल्म पुरस्कार के लिए प्रविष्टि की समय सीमा बढ़ा दी गई है और निर्माताओं से 27 दिसंबर तक अपनी प्रविष्टियां भेजने का आग्रह किया गया है। महाराष्ट्र फिल्म रंगमंच और सांस्कृतिक विकास निगम की प्रबंध निदेशक स्वाति महसे पाटिल ने बताया कि 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2024 के बीच सेंसर की गई मराठी फिल्मों के निर्माता इस पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकेंगे। प्रविष्टि फॉर्म निगम की वेबसाइट filmcitymumbai.org पर उपलब्ध। राष्ट्रीय कीट जनित रोग नियंत्रण अभियान के अंतर्गत डेंगू के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए नवी मुंबई महानगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग की ओर से गुरुवार को विशेष शिविरों का आयोजन किया गया। यह शिविर 26 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के क्षेत्रों में 26 अलग अलग स्थानों पर आयोजित किए गए। इस शिविर में सभी बुखार रोगियों के रक्त के नमूने लिए गए, साथ ही नागरिकों को डेंगू के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। और कोलकाता का रुख करें तो बांग्लादेश मुद्दे का असर पश्चिम बंगाल में साफ दिखाई दे रहा है। सनातन जागरण मंच बांग्लादेश में इस्कॉन के चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के खिलाफ कोलकाता में विरोध प्रदर्शन कर रहा है। भाजपा ने अगले हफ्ते से पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश से लगी पेट्रापोल सीमा पर विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। ये थी महानगरों से जुड़ी खबरें और अब महानगरों के मौसम का हाल भी जान लेते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में धीरे धीरे सर्दी बढ़ने लगी है और पारा आज गिरते हुए 10 डिग्री के आसपास पहुंचने का अनुमान है। दिन में तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आसमान मुख्यतः साफ रहेगा और मौसम शुष्क रहेगा। मुंबई में हल्के बादल छा सकते हैं, हालांकि बारिश की संभावना नहीं है। न्यूनतम तापमान 15 डिग्री रहा और अधिकतम 32 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जा सकता है, जबकि कोलकाता में आंशिक बादल छाए रहेंगे और तापमान 20 और 28 डिग्री के बीच रिकॉर्ड किया जा सकता है।
चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव जनरली क्लाउडी स्काई विद हेवी रेन। द मिनिमम टेम्परेचर वॉज 22 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम विल बी अराउंड 26। बेंगलुरु इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू हैव जनरली क्लाउडी स्काई विद लाइट रेन। द मिनिमम टेम्परेचर वॉज 18 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम विल बी अराउंड 26। हैदराबाद एक्सपेक्टेड टू हैव पार्टली क्लाउडी स्काई विद हेज। द टेम्परेचर विल हैव बिटवीन अ मिनिमम ऑफ 18 डिग्री सेल्सियस एंड अ मैक्सिमम ऑफ 30 डिग्री सेल्सियस।
तो मौसम की जानकारी दे दी हमने श्रोताओं को, अब बात कर लेते हैं इतिहास में दर्ज आज के दिन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। तो 1775 में सर जेम्स जे ने अदृश्य स्याही का आविष्कार किया था और ये घटना भी इतिहास का हिस्सा बनी।
The discovery, this is in 1813, the discovery of iodine was announced this day at a French medical lab and Nicholas Clement, the name of its discoverer, was a pharmacist named Bernard Queteau. 1814, the Times in London became the first newspaper to be printed by steam power. Its hand presses were replaced by new machines invented by Friedrich Koenig and Andreas Bohr. The replacement of hand presses by the new technology meant that for the first time it became possible to produce newspapers on a scale that could meet public demand.
जी, और 1830 में आज ही के दिन यानी 29 नवंबर के दिन पोलैंड में रूस के शासन के खिलाफ नवंबर विद्रोह की शुरुआत हुई थी और 1870 में ब्रिटेन में आवश्यक शिक्षा कानून लागू हुआ था।
1890 दिस डे द मेजी कॉन्स्टिट्यूशन गोज इनटू इफेक्ट इन जापान एंड द फर्स्ट डायट दैट्स द पार्लियामेंट कन्वीन्स एंड दिस डे इन 1899 जोन गैम्पर फाउंडेड एफसी बार्सिलोना अलोंग विद 11 अदर एंथुसियास्ट्स ऑफ फुटबॉल, अ गेम दैट वाज स्टिल लार्जली अननोन इन द वर्ल्ड एट दैट टाइम।
और 1944 में अल्बानिया को नाजी कब्जे से स्वतंत्र कराया गया था।
1947 ऑन दिस डे द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली पास्ड अ रेजोल्यूशन व्हिच रिकमेंडेड द पार्टीशन ऑफ पैलेस्टाइन इनटू सेपरेट ज्यूइश एंड अरब स्टेट्स एंड 1961 द फर्स्ट यूएस सैटेलाइट कैरिंग एन एनिमल वाज लॉन्च्ड बाय मर्क्यूरी एटलस 5 फ्रॉम केप कैनावरल। द पैसेंजर वाज इनोस, अ 5-year-old चिंपैंजी ऑन अ 2-orbit राइड फॉर 3 hours and 20 minutes।
और वर्ष 1999 में 29 नवंबर के दिन ही महाराष्ट्र के नारायण गांव में विश्व का सबसे बड़ा मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप खुला था।
एंड 2008 दिस डे लेडी बॉक्सर मेरी कॉम वन द 5th विमेंस आईबा वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप।
और इतिहास के बाद अब याद करते हैं उन महान विभूतियों को जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन है। इस क्रम में सबसे पहले याद कर रहे हैं प्रसिद्ध उद्योगपति JRD टाटा को जिनकी आज पुण्यतिथि है। JRD टाटा का नाम आधुनिक भारत की बुनियाद रखने वाली औद्योगिक हस्तियों में सबसे ऊपर आता है। देश की पहली वाणिज्यिक विमान सेवा टाटा एयरलाइंस की शुरुआत JRD टाटा ने की थी, जो बाद में भारत की राष्ट्रीय विमान सेवा एयर इंडिया बनी। इसीलिए उन्हें भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र का जनक भी कहा जाता है। JRD टाटा ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। 34 वर्ष की आयु में वे टाटा संस के चेयरमैन बने। दशकों तक उन्होंने विशालकाय टाटा समूह की कंपनियों का मार्गदर्शन किया, लेकिन टाटा समूह का अध्यक्ष बनने से पहले निचले पायदान से काम किया, जिससे उद्योग के विभिन्न समूहों को समझने का अवसर मिला और वो उद्योगों को विभिन्न दिशाओं में बढ़ाने में सफल हुए। उनके अध्यक्षता में टाटा समूह ने नई बुलंदियों को छुआ। उनके काल में टाटा समूह की कंपनियों की संख्या 15 से बढ़कर 100 से ज्यादा हो गई थी। साथ ही टाटा समूह की परिसंपत्ति 62 करोड़ से बढ़कर 10,000 करोड़ रुपए की हो गई थी। JRD टाटा भारत के पहले लाइसेंस प्राप्त पायलट थे। उन्होंने इसे करियर के रूप में भी अपनाया। 10 फरवरी 1929 को JRD टाटा को पायलट का लाइसेंस दिया गया और ये पहला मौका था जब भारत में किसी व्यक्ति को पायलट का लाइसेंस जारी किया गया था। 1932 में जेआरडी टाटा ने भारत की पहली विमानन सेवा टाटा एयरलाइंस की आधारशिला रखी और यही एयरलाइंस 1946 में एयर इंडिया के रूप में भारत की राष्ट्रीय विमान सेवा बनी।
1885 फ्रीडम फाइटर फिलोसोफर रिफॉर्मर राम सिंह कुका वॉज मार्टर्ड on this day, that is 29 November. Founder of the Kuka movement, he was the first Indian to use non-cooperation and boycott of British merchandise and services as a political weapon. And tributes to Amritlal Vithal Das Thakkar, popularly known as Thakkar Bapa, born this day in 1869, an Indian social worker who worked for the upliftment of tribal people in Gujarat state in India. He became a member of the Servants of India Society, founded by Gopal Krishna Gokhale in 1914. The Bharatiya Adim Jati Sevak Sangh was founded on 24th October 1948 on his initiative. And also 1898, remembering C.S. Lewis, prolific Irish writer, scholar born this day in Belfast, Ireland, best known for his Chronicles of Narnia fantasy series, books which center upon a group of English children who venture into a fantasy world by way of magical wardrobe.
असमिया साहित्यकार इंदिरा गोस्वामी की भी आज पुण्यतिथि है। इंदिरा गोस्वामी द्वारा रचित एक उपन्यास मामरे धरा तरोवाल अरुदुखन के लिए उन्हें सन 1982 में साहित्य अकादमी पुरस्कार असमिया से सम्मानित किया गया था। उनकी कहानियों का पहला संग्रह 1962 में प्रकाशित हुआ। उन्हें उनके दोतल हातिर उने खोबड़ा होड़ा पेंटे पेजेस स्टैंड विद ब्लड और द मैन फ्रॉम छिन्नमस्ता उपन्यासों के लिए जाना जाता है। इंदिरा गोस्वामी को उच्च दर्जे का साहित्यकार माना जाता है। इंदिरा गोस्वामी ने वृंदावन में अभिशप्त विधवाओं पर उपन्यास लिखा तो वाराणसी के घाटों का भी चित्रण किया। अपने शोध के विषय के रूप में कांदली रामायण और तुलसीदास के रामचरितमानस का तुलनात्मक अध्ययन को चुना और रामायणी बन गई। रामायण पर व्याख्यान देने लगी। इसके लिए देश विदेश का भ्रमण किया और कई सम्मान प्राप्त किए। इंदिरा गोस्वामी की रचनाओं का अधिकांश भारतीय भाषाओं में अनुवाद हुआ और ये पुस्तकें पढ़ी भी जाती हैं जो उनकी उच्च कह सकते हैं कि उत्कृष्टता की एक साहित्यकार के रूप में एक तरह से हस्ताक्षर हैं।
Another writer here. Human beings are the only creatures who are allowed to fail. If an ant fails, it is dead. But we are allowed to learn from our mistakes and from our failures. And that's how I learn, by falling flat on my face and picking myself up and starting all over again. These golden lines were uttered by British writer Madeline L'Engle, author of the classic children's novel A Wrinkle in Time. She passed away this day in 2007 at the age of 88. And friends, 1832, Germantown of Pennsylvania, USA, saw the birth of Louisa May Alcott, known for writing children's books. And of course, the most famous novel of Alcott is Little Women, an autobiographical text about a cheery family of modest means. She also submitted work regularly to the Atlantic Monthly, published several short stories and other novels for youth, but none were as successful as Little Women.
आज जयंती है परमवीर चक्र से सम्मानित भारतीय सैनिक गुरबचन सिंह सालरिया की। उन्हें यह सम्मान 1961 में मरणोपरांत मिला। संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति सेना के साथ कांगो के पक्ष में बेल्जियम के विरुद्ध बहादुरी पूर्वक लड़ते हुए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले योद्धाओं में कैप्टन गुरबचन सिंह सालरिया का नाम लिया जाता है, जिन्हें 5 दिसंबर 1961 को एलिजाबेथ विला में लड़ते हुए अद्भुत पराक्रम दिखाने के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था।
23 years ago, friends, we lost a gem, a guitar player, songwriter, singer, who gained fame as the lead guitarist of one of the most important and influential bands in the history of rock music, the Beatles. Yes, friends, George Harrison was the youngest of the Fab Four and was known as the Quiet Beatle. He was rated as a major musician in his own right after the breakup of the group in 1970. Arguably one of the most gifted songwriters of his generation, George Harrison created some incredible tracks. Sadly, he battled cancer for several years and passed away this day in the year 2001. A beautiful song from Harrison that was written soon after the Beatles broke up in 1970, and at the same time his mother passed away. That's what is going on in the background. All things must pass. None of life's strings can last. So I must be on my way and face another day. After George Harrison Twins, it's We Remember, another country and western style guitar man from Kentucky, United States, Merle Travis, who popularized the complex guitar picking technique, now known as the Travis style or Travis picking, whereby the index finger plays the melody while the thumb plays rhythmic accompaniment. This technique became a rage and the musicians went about incorporating into their compositions, while fans were going crazy, of course. A sample of a Mel Travis song dedicated to him on his anniversary today. He was born this day, 1917.
Temptation, that's what you are to me. That's all you'll always be, it seems. Sweet temptation, you smile and pass me by. Still you occupy my dream. Well, now maybe I've got lots of hidden charms.
और आज ही जयंती है उर्दू भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार अली सरदार जाफरी की. इन्हें 1997 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया. उन्होंने एंग्लो अरबिक कॉलेज दिल्ली से बीए पास किया और बाद में लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए की डिग्री हासिल की. उन्हें प्रेमचंद, रविन्द्रनाथ ठाकुर, फैज अहमद फैज, मुल्कराज आनंद जैसे भारतीय साहित्यकारों तथा नेरुद्दा और लुई अरांगा जैसे विदेशी चिंतकों के विचारों को भी उन्होंने समझा. कई आलिमों की संगत का यह असर हुआ कि सरदार एक ऐसे शायर बने जिनके दिल में मेहनतकशों के दुख दर्द बसे हुए थे. उनकी मुख्य रचनाओं में शामिल हैं परवाज, नई दुनिया को सलाम, अमन का सितारा, एशिया जाग उठा, पत्थर की दीवार और मेरा सफर आदि. उन्हें पद्मश्री, ज्ञानपीठ पुरस्कार आदि पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया.
From Rochester, New York comes Chuck Mangione. His real name is Charles Frank Mangione. He's a trumpeter, flugelhorn player and composer, worked with several jazz legends and had his own band, the Jazz Messengers. And of course, Chuck turns 84 today. A global smash hit single of Mangione done in pop jazz style. Feels so good, that's what you're going to feel after hearing this sampler, friends.
संगीत निर्देशक जोड़ी विशाल शेखर के शिखर रवजियानी का आज जन्मदिन है. संगीत निर्देशक के साथ साथ शेखर एक अभिनेता भी हैं और गायक भी. विशाल शेखर की जोड़ी 1999 से बॉलीवुड संगीतकार जोड़ी रही. रवजियानी ने अपने करियर की शुरुआत विज्ञापन से की थी. उन्होंने सारे गामा पा के लिए ऑडिशन दिया और चुने गए. फिर वे विशाल शेखर की जोड़ी का हिस्सा बने. इस जोड़ी ने कई बॉलीवुड गाने बनाए और 2007 और 2010 में सारे गामा पा में जज की भूमिका निभाई. रवजियानी ने तुझे भुला दिया, बिन तेरे और मेहरबान जैसे कई गानों को अपनी आवाज भी दी. इस जोड़ी ने कई फिल्मों के लिए बैकग्राउंड भी तैयार किया. हालांकि 2012 में ये जोड़ी अलग हो गई. शेखर को हंसी हंसी तो फंसी फिल्म के जहनसीब गाने के लिए बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का पुरस्कार भी मिला. ओम शांति ओम फिल्म के कई ट्रैक बहुत हिट रहे. एक गाना आपके लिए.
गुड आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं. हो आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं. दिल को बना दे जो पतंग, सांसे ये तेरी वो हवाएं हैं, आंखों में तेरी।
और इस खूबसूरत से गाने के साथ ही हम चाहेंगे आप सभी से आज सवेरे न्यूज मैगजीन प्रोग्राम यही समाप्त करने की अनुमति, लेकिन आप लगातार बने रहिए आकाशवाणी न्यूज के साथ।
थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, नमस्कार।
नमस्कार।